भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से छठा स्कंध अध्याय 16। महाराज चित्रकेतु का भगवान से मिलाप और श्लोक संख्या 38। विषया त्रिश नरपशव या उपासते विभूति न परम त्वाम तेषाम आशीष ईश तद अनु विष्यन्ति यथा राजकुलम् विषया त्रिशो नरपशवो य उपासते विभूति न परम तमम् य उपासते विभूति न परम त्वाम् तेषाम् आशीष ईश तदनु विष्यन्ति यथा राजकुलम् विषया त्रिशो नरपशवो य उपासते विभूतिः न परम् त्वाम् तेषाम् आशीष ईश तदनु विष्यन्ति यथा राजकुलम् विषया त्रिशो नरपशवो य उपासते विभूति न परम् त्वाम् तेषाम् आशीष ईश तदनु विष्यन्ति यथा राजकुलम्। और कोई प्राणी माता जी लोग विषय विषय भौतिक इच्छाओं के प्रति संबंधी इंद्रिय तृप्ति के उत्सुक सॉरी त्रिश इंद्रिय तृप्ति के, नरपशवा पशु तुल्य मनुष्य, जे जो लोग उपासते अत्यंत भव्य उप आराधना करते हैं, विभूति परमेश्वर के लघु कण देवतागण, न नहीं परम भगवान को, त्वाम आपको, तेषाम उनका, आशीष आशीर्वाद, ईश हे परम नियंता, तत् उन देवताओं को, अनु तत्पश्चात, विनश्यन्ति विनष्ट होंगे, यथा जिस प्रकार राजकुलम सरकार राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सरकार के भंग होने के बाद अनुवाद तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। हे भगवान, हे परमेश्वर, इंद्रिय तृप्ति के भूखे तथा विभिन्न देवताओं की उपासना करने वाले अज्ञानी पुरुष नरवेश में पशुओं के समान हैं। वे पाशविक वृत्ति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को, जो आपके जस की लघु चिंगारी के समान हैं, पूजते हैं। समस्त ब्रह्मांड के संहार के साथ ये देवता तथा इनसे प्राप्त आशीर्वाद उसी प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार राजा की सत्ता छिन जाने पर राजकीय अधिकारी। तात्पर्य भगवत गीता 7:20 का कथन है, कामेस्तरहित ज्ञाना प्रबदन्ते अन्य देवता। जिनके मन भौतिक कामनाओं से विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं। इसी प्रकार इस श्लोक में भी देवताओं की उपासना की भर्त्सना की गई है। हम देवताओं का आदर कर सकते हैं किंतु वे पूजनीय नहीं है। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि मारी गई होती है, हृदय ज्ञान, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि जब इस भौतिक दृश्य जगत का संहार होगा तो ये सारे देवता भी जो जगत के विभागाध्यक्ष हैं नष्ट हो जाएंगे, और जब देवता नष्ट हो जाएंगे तो उन्होंने अज्ञानी मनुष्यों को जो वर दिए हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भक्त को चाहिए कि देवताओं की पूजा करके भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा न करें, वरन ईश्वर की सेवा करें जो इनकी आकांक्षाओं का पूरा करने वाले हैं। भागवत 2:3:10 के वचन है, अकाम सर्व कामो वा मुक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुष परम। चाहे भौतिक कामनाओं से पूर्ण हो या उनसे मुक्त या मुक्ति का इच्छा हो, व्यापक दृष्टि से बुद्धिमान मनुष्य को सभी प्रकार से परम पुरुष परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह सिद्ध मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिसका रूप मनुष्य का है और कर्म पशु जैसे होते हैं, वह नर पशु या द्विपद पशु कहलाता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखता उसकी भर्त्सना यहाँ नर पशु के रूप में की गई है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः ऐमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमूसुपुरुषम् भुक्ते गुणांषोडशषोडशात्मकम् सोलम् कृषिष्ठम् भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो इस श्लोक में मुख्य करके तीन बातें बताई गई है अस्पष्ट रूप से, और एक छिपा हुआ बात है वह बताया गया है। प्रथम बात यह बताया गया है कि जो लोग अपने कामना पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं का उपासना करते हैं उनको टाइटल दिया गया है, और वह टाइटल है नरपशु। ठीक है, देवताओं का उपासना करेंगे कुछ माल पानी मिल भी जाएगा उनको, कुछ किए हैं तो मिलेगा जरूर, लेकिन वह नश्वर होता है। और उदाहरण दिया गया है कैसे नश्वर होता है, शक्ति विहीन हो जाता है कैसे। उदाहरण दिया गया है विनश्यति यथा राजकुलम, जैसे राजा का कुल या शासन जब खत्म हो जाता है, अपने गद्दी से चला जाता है, सत्ता छीन ली जाती है या सरकार भंग हो जाती है, तो जो गति होती है वह उस व्यक्ति का गति होता है। जो हिडन बात है, जो स्पष्ट नहीं कहा गया है, वह बात यह है कि मानव जीवन भगवत उपासना के लिए है, लेकिन लोग भगवत उपासना नहीं करते हैं। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है, ईस जे विषय त्रिश नर पशव विभूति उपासते परम त्वाम न तेषाम आशीष तदनुम विनश्यति यथा राजकुलम। तो स्पष्ट है कि हे भगवान, जो लोग विषय वासना में पड़ कर करके नर पशु के समान होकर के आपके विभूति का यानी देवताओं का उपासना करते हैं, जो आप परम पुरुष हैं आपका वो उपासना नहीं करते, न तुम आपका उपासना नहीं करते हैं, जो भी आशीष मिलता है आशीर्वाद मिलता है वह अंततः नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राजभंग होने पर सरकारी चमचों का या सरकारी जो काम करने वाले हैं उन लोगों का सब कुछ भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यह बड़ा ही सुंदर प्रार्थना है महाराज चित्रकेतु का। इस अध्याय में कई एक चीज सीखने को मिलता है। एक, शुद्ध भक्त के द्वारा दिया गया मंत्र। भक्त शुद्ध है, मंत्र शुद्ध है और उसकी पोटेंसी भी शुद्ध है। नारद जी एक महान वैष्णव हैं, उनका काम है लोगों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, लोगों को कृष्ण में लगाना, और वे जो मंत्र दिए नारद जी महाराज चित्रकेतु भी उस मंत्र को यथावत निम्बारका आशीर्वाद तो देता, लेकिन बात भी बोलता रहता, कोई मंत्र भी पढ़ता रहता है वो साथ में। क्या मैं कह रहा था, नारद जी ने मंत्र जो दिया उस मंत्र को महाराज चित्रकेतु बड़े सीरियसली ग्रहण किए और 7 दिन तक एकाग्र भाव से उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान का उपासना किए। तदुपरांत उन्हें भगवान शंकरषण देव का दर्शन हुआ। भगवान शंकरषण देव का सौंदर्य देख कर करके विभूतित हो गए महाराज चित्रकेतु। उनके लिए एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस था। संसार में हम देखते हैं लोगों को, सुनते हैं लोगों को, मिलते हैं लोगों से, एक प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। जैसे प्रभुपाद जी यहां बैठे हुए हैं, बहुत से लोग आते हैं देखते हैं बहुत देर तक, स्वामी जी कब बोलेंगे है? स्वामी जी कब बोलेंगे, वो एक्सपीरियंस उनका। कुछ लोग तो छूते भी हैं कि सही है कि क्या है, एक्सपीरियंस उनका। तो भगवान शंकरषण देव आए, एक तरह से महाराज चित्रकेतु को विश्वास नहीं होता कि सही में भगवान है, छू रहे थे, सही में है कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। और जब समझे कि भगवान है तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, वो कुछ कहना चाहते थे। प्रायः देखा जाता है जब भी भगवान का साक्षात्कार हुआ है भक्तों का तो भगवान का प्रार्थना करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं शुरू में, हरिदास। जैसे ध्रुव महाराज को भी जब भगवान का दर्शन हुआ तो ये बोलना चाहते, बोल नहीं पा सकते थे, तो भगवान अपने शंख से उनके कपोलों का स्पर्श किया तब ये बोलने लगे। ठीक वैसे ही भगवान शंकरषण जब दृष्टिपात किए तब ये प्रार्थना प्रारंभ किए। प्रार्थना कई एक प्रकार का होता है। प्रार्थना का शब्दार्थ जो है प्र अर्थ में इंच प्रत्यय लगा हुआ है तो प्रार्थना हुआ है, प्र मतलब प्रकृष्ट रूपेण, अर्थ मतलब कामना के द्वारा। विभिन्न प्रकार की कामनाएं होती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग कामनाएं होती हैं, और वे लोग उसके अनुसार प्रार्थना करते हैं। जैसे कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है, चतुर्विदा भजन्ते माम जनाश्रुतौ अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तृषभ। ये चार प्रकार के लोग प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन उनका अर्थ कामना अलग अलग है। जैसे आर्त व्यक्ति, आर्त व्यक्ति प्रार्थना करेगा भगवान से तो एक प्रकार का होगा, अर्थार्थी का प्रार्थना दूसरे प्रकार का होगा, जिज्ञासु का प्रार्थना तीसरे प्रकार का होगा, और ज्ञानी का प्रार्थना चौथे प्रकार का होगा। इन सबसे पड़े प्रेम पूर्ण प्रार्थनाएं जैसे ब्रज की गोपियों ने किया भगवान के चरणों में। तो प्रार्थनाएं अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कह सकता है कि इसमें अर्थ छिपा हुआ है, कामना छिपा हुआ, तो भक्ति कैसे हो सकता है? अर्थ पूर्वक किया गया जो प्रार्थना है वो भक्ति कैसे हो सकता है? कुछ कामनाओं को लेकर के, कामना खराब नहीं है, कामनाएं रहेगी वो खराब नहीं है, अब उसका लक्ष्य क्या है यह देखना। यदि कृष्ण प्रेम की कामना है, कृष्ण सेवा की कामना है, तो खराब कामना नहीं है। लेकिन अपने लिए जो कामना है और उसके लिए प्रार्थना किया जाए वह खराब है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी दो बात बतलाए हैं ये प्रार्थना को लेकर के, इस अर्थ को लेकर के, इस कामना को लेकर के, कि हम लोगों का असली कामना क्या होना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रायः संसार में लोग अपने को देह समझते हैं, देह के भरण पोषण में लगे रहते हैं, और देह और देह से संबंधित वस्तुओं की कामना को लेकर के लोग प्रार्थना करते हैं। देह और देह से संबंधित वस्तुओं को लेकर के की गई जो प्रार्थना है वह भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार की कामनाएं होती है, एक इहलोक और एक परलोक की कामना। इहलोक की कामना, इस संसार की कामना। संसार का मतलब क्या? जितना दिन जिए सुख से जिए, आनंद से जिए। और लोग समझते हैं कि पैसा ही एकमात्र वस्तु है जो हमको आनंद दे सकता है, तो धन संपत्ति के लिए कामना, धन संपत्ति घर आए जय जगदीश हरे, ये प्रार्थना धन संपत्ति के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, पत्नी पुत्र परिवार के लिए, समाज के लिए, ये सब प्रार्थनाएं जो हैं यह लोक की प्रार्थना। कुछ लोग ऐसे हैं जो परलोक का प्रार्थना करते हैं, परलोक मतलब स्वर्ग लोक इत्यादि तक, ये दोनों कामना है और इसके लिए प्रार्थना करते हैं स्वर्ग लोक इत्यादि तक। अब ये जो कामना होती है वो क्यों होती है? जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो कामना के लोग करके, कामना क्यों होती है? क्यों हम भगवान के शरण में नहीं जाते हैं? भगवान के शरण में नहीं जाने के दो कारण है, एक है कामना और दूसरा है स्वभाव की परवशता। कामनाएं अब से नहीं, जन्म जन्मांतर से, जब से देह प्राप्त हुआ है, एक नहीं अनेक देह अपने कर्म के अनुसार विभिन्न प्रकार का कामना करते हैं। कामनाएं बदलती रहती है। एक छोटे बच्चे की कामना अलग है, जवान व्यक्ति की कामना अलग है और बूढ़े व्यक्ति की कामना अलग है। ये कामनाएं बदलती रहती है और उन कामनाओं के चलते भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जो जो आवश्यकता पड़ती है। और एक स्वभाववश, स्वभाव की प्रवक्तावश, तो दोनों तरह से देखा जाए, कामना से या प्रवक्ता, दोनों को लेकर के लोग भगवान के अलावा अन्य के शरण में जाते हैं, भगवान के शरण में नहीं जा पाते हैं। तो यही दो बातों का यहां पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं। अब हम लोग श्लोक पर आएंगे। कहते हैं विषय त्रिशो नर पशवो, सेंस ग्रेटिफिकेशन में जो लगा हुआ है उसको टाइटल दिए हैं महाराज चित्रकेतु नर पशवो। यही बात अन्यत्र कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना पीना बाल बच्चा उत्पन्न करना, भय से रक्षा करना, सोना, ये सब कॉमन चीज है हम में भी और पशुओं में भी। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हम भी बाल बच्चा पैदा करते हैं, पशु भी बाल बच्चा पैदा करते हैं, हम भी अपना रक्षा करते हैं, वो भी अपना रक्षा करते हैं। तो मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या है? धर्म ही एको अधिको विशेषो, अधर्म विहीन पशु भी नराणाम। धर्म ही एकमात्र है जो भेद करता है कौन मनुष्य है और कौन पशु है। धर्म शरीर का, धर्म का बात नहीं कहा गया है यहां पर, स्वभाव का बात कहा गया है। हम लोगों का धर्म है कृष्ण का सेवा करना, जीवरे स्वरूप है कृष्णे नित्य दास, ये धर्म है। कृष्ण का सेवा करना ये धर्म है। जो भी कहता है मैं एक धार्मिक बनना चाहता हूं, मैं धार्मिक हूं, तो उसका पहचान है कि वो कृष्ण का सेवा कर रहा है कि नहीं। कभी कभी लोग मोरालिटी को धर्म समझते हैं, लेकिन मोरालिटी धर्म नहीं है, ये सब कैतव धर्म है। भागवतम के शुरू में ही कहा गया है कि धर्म क्या है, धर्म वह है जो भगवत प्रेम को प्रदान करे, वह है धर्म, और वह होता है सेवा के द्वारा। तो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो धर्म का पालन कर रहा है, वह नर है। और उसके अलावा जो भगवान का सेवा नहीं करता है, धर्म का भले ही दिखावा भी क्यों न करता हो, लेकिन वह है नर पशु। धर्म ही एको अधिको विशेष, धर्म विहीन पशु भी नराणा, वह पशु है। तो वही बात कहा गया विषय त्रिशो नर पशवो, नर पशु वह है जो विषय वासना इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, य उपासते विभूति, जो भगवान के विभूति यानी देवताओं का उपासना करते हैं। न परम त्वम, भगवान के सामने न त्वम, हे प्रभु हे परम परमेश्वर, आपका भी उपासना नहीं करते हैं। किसका उपासना करते हैं? विभिन्न देवताओं का। क्यों उपासना करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए वे लोग नर पशु हैं। भगवत गीता के सातवें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से 19 के बीच में उपासकों का वर्णन किया गया है। पहले भगवान उन उपासकों का वर्णन करते हैं जो धर्म का पालन करते हैं, यानी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और कोई तकलीफ भी होता तो भगवान के पास जाते हैं। और अन्य श्लोक संख्या 20 से 23 चार श्लोकों में भगवान उन उपासकों का वर्णन किए हैं जो भगवान के अलावा अन्य का शरण ग्रहण करते हैं। तो ये आज का जो श्लोक है ये ठीक बैठता है सातवां अध्याय के, भगवद्गीता के सातवां जो अध्याय है उसके श्लोक संख्या 20 से लेकर के 23 के बीच में जो बात कहा गया है, कामेस्त हित ज्ञान प्रबदंदे अन्न देवता तम तम नियमावस्था प्रकृतिया नियमाशया, उसके बाद यो यो याम याम तनु भक्त सद्यार्चित मुच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धा तामेव विद्याम्यहम्, स तथा श्रद्धया युक्त तस्याराधन मीहते लभते च तथा कामान एव भीतान्वितान। अंत में कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत अग्नेषां देवान देव जो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। तो दोनों कामना को लेकर के, एक कामना को लेकर के भगवान का भरण भगवान के पास जाते हैं और उसके विषय में तात्पर्य प्रभुपाद जी श्लोक किए हैं दूसरे स्कंध से, अकाम सर्व कामो वा मुक्ष कामो दारथि। भगवान के पास जाओ, जो कुछ भी चाहिए उनके पास जाओ, अन्य किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकाम कामना नहीं है तो अभी जाओ, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, उनके सेवा किए हुए बिना हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो अकाम सर्व कामो वा, सब कामना है तो भी उनके पास जाओ। ऐसे भी देवी देवता लोग किसका देते हैं, बाप घर से थोड़े कुछ लाते हैं, सब तो उनका ही दिया हुआ है, सब तो उनका ही दिया हुआ है। मैं प्राय एक घटना कहता हूं कथानक के रूप में कि एक बार अकबर दिल्ली से आगरा आ रहे थे, उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। चतुर्भुज दास वो ब्रज में आए तो उन्हें प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी, वो पानी ढूंढ रहे थे तो एक किसान से मिले, किसान के पास पानी था, अपना पानी भी दे दिया, खाने के लिए रोटी रखा था रोटी भी दे दिया। अकबर खाकर बड़े खुश हुए, किसान को अपना एड्रेस दे दिए, कहे जब तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मेरे पास तुम आ जाना, जब तकलीफ होगा तो तुम हमारे पास आ जाना। तो कालांतर में उस किसान को अपने बेटी का विवाह करना था, तो उसे याद था कि वो एक आदमी आया था घोड़े पर चढ़ करके और बहुत अच्छा कपड़ा वपड़ा पहना था, अपना एड्रेस देकर गया, आगरा का है, नजदीक में मथुरा से नजदीक है, चलता हूं, कहा था कि सहयोग करूंगा। आया, उस दिन अकबर की सवारी निकली थी, सब गान बाज हो रहा था, सब लोग नाच गा रहे थे, अकबर जा रहा था, ये दूर से देखा, गए भाई अकबर, जोर से पुकारा, अकबर अकबर, सब सिपाही लोग बड़े गुस्सा में है कि महाराज को ऐसे संबोधित कर रहा है, कौन है। तो अकबर का ध्यान गया कि बुला रहा है, पुलिस लोग पकड़ रहे हैं, फिर भी बोला है अकबर अकबर, देखो तुम हमको बुलाया था, तुम्हारा ये जो पता है मेरे पास। अकबर सुन लिया और बुलाया उसको, सिपाहों को बुला, उसको लेकर आओ मेरे पास, ये मेरा नाम ऐसे ले रहा है, मैं सहानुसाह हूं, मेरा नाम ऐसा ले रहा है, या तो मेरा जान पहचान वाला होगा और नहीं तो मूर्ख होगा, दो ही हो सकता है। तो अकबर बुलाया, बुद्धि हमेशा लगाना चाहिए। अकबर अहंकार बस ये नहीं, सारे बदमाश आदमी हमारा नाम ले रहा है, इंसल्ट कर रहा है, मरने दो, नहीं बुलाया उसको, कारण क्या है समझना चाहिए। तो वो अपना दिखा दिया एड्रेस कि आपको याद है जब आप आ रहे थे कहीं से, आपको प्यास लगा था, भूख लगा था, तो हमसे मिले थे मथुरा में, आपने एड्रेस दिया था। अरे हाँ हाँ भी याद आया था। तो अकबर उनको लेकर अपने महल आए, उनके खाने पीने रहने का सब व्यवस्था किए। तो वो देखता था कि अकबर प्रत्येक दिन सुबह उठता है और नमाज पढ़ता था ऐसे। तो एक दिन अकबर से पूछा कि आप ये सुबह उठकर क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से मांगता हूं और फिर मैं सबको देता हूं जो अल्लाह देता है। तो यह सोचा कि तो भिखमंगा आदमी है, ये दूसरे से मांग कर देता है, तो मैं किसी के मांगूंगा, अपना नाम बदनाम करूंगा, मैं भी उसी के पास मांगने जाऊंगा। वहां से चल दिया। तो किसान था लेकिन उसका बुद्धि पक्का काम किया। ये देवते लोग भिखमंगे हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं है, ये सब भगवान दिए हैं तब देते हैं। लेकिन जो नर पशु लोग हैं वे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? एक है उनकी कामना और दूसरा है स्वभाव की परवस्था, उनके स्वभाव में हो गया है। यदि इन ईश्वरों को, कंट्रोलरों को, देवताओं को यदि वे भगवान का अंश समझ करके भगवान इन लोगों से मांगे तो अभी कोई तकलीफ नहीं है। कामना बस ये लोग भगवान से इनको अलग समझते हैं और वही तकलीफ का कारण है। जब ये समझें कि भगवान के सप्लायर ये लोग हैं, भगवान परम पुरुष हैं और ये भगवान के अंश हैं, यह समझते हुए मांगे तब कोई तकलीफ नहीं है। तब वह फल अंतवंतु नहीं होगा, तब वह परमानेंट फल होगा। लेकिन भगवान से इनको अलग कर देते हैं, इसीलिए उनका फल जो होता है अंतवत्व हो जाता है। क्योंकि जो कामना है वह भी मेटेरियल है, जो देवतागण है वह भी मेटेरियल है। सबका जन्म होता है, सबका मृत्यु होता है, लेकिन भगवान इटर्नल है। यदि भगवान से संबंध स्थापित कर दिया जाएगा तो ये तो भक्ति है, सब कुछ इटर्नल हो गया। तो वे नर पशु लोग हैं जो कामना बस देवताओं का उपासना करते हैं, भगवान का नहीं उपासना करते। वास्तव में जीवन का परम लक्ष्य है भगवान का उपासना करना, भगवान का भजन करना। भगवान का हम यदि भजन करते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, वे हमारे समस्त आवश्यकताओं को समझते हैं। जिन आवश्यकताओं को हम भी नहीं समझते हैं उन आवश्यकताओं को भी भगवान समझते हैं। हमारे मांगने से पहले ही उसका व्यवस्था कर देते हैं। जोग क्षेम वहामि अहम्, जो नहीं है लाकर भगवान देते हैं और जो है उसका वे रक्षा करते हैं। भगवान को और कोई काम धंधा नहीं है, वे एक ही काम में लगे रहते हैं। और वह काम क्या है? कि भक्तों का भरण पोषण। हालांकि भगवान सबका भरण पोषण करते हैं लेकिन भक्तों का विशेष रूप से। योग क्षेम वहामि अहम्, मैं स्वयं करता हूं। अन्य लोगों के भरण पोषण के लिए देवताओं को लगा दिए, तुम लोग करते रहो। भगवान की अनंत शक्तियां हैं लेकिन भक्तों के लिए कहते अहम, मैं स्वयं करता हूं, मैं स्वयं वहन करता हूं। भक्त लोग डायरेक्टली भगवान के सुरक्षता में रहते हैं, इसीलिए वे बिंदास रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है उनको। वा गदगदया दवते यश्चित रुदंत भिक्षण, रुदंत भिक्षणम हसती क्वचित विगत उद कैसे बिलज उद्गायते नर्तते च मदभक्त युक्त भुवन पुनाति। वो केवल नाच गान में आनंद लेते हैं और कुछ नहीं। भगवान के कीर्तन कर करके, भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। सुप्रीम पावर के पास जाते हैं। वही बात यहां पर कहते हैं, न परम त्वम त्वाम, हे भगवान आप परम पुरुष हैं, वे आपके पास नहीं आते हैं। मन काम वासना बड़ा खतरनाक है। भगवान का एक चीज होता है, एक तो होगा कि हम लोग जो चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमारा लक्ष्य वही रहेगा। दूसरा, हम समझते हैं पहले कि हम प्रयास कर लेते हैं, हमसे मिलता है ठीक है, देवताओं के पास जाएंगे, उनको भगवान से जोड़ते नहीं हैं, उनको भी भगवान से अलग रखते हैं। पता नहीं उन लोगों को डर क्यों है भगवान से। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग डरते रहते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं इंद्रिय तृप्ति वाले। इसीलिए कामना के संबंध में भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान बतलाए हैं, कैसे है, 16 प्रसक्त चेत पतंती नरके सुचौ,
इसको याद है,
हैं, पतंती नरके सुचौ काम हृत, 16वां अध्याय का 16वां श्लोक है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृत प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचौ। अनेक चित्त विभ्रांत, जो व्यक्ति तृष्णा में या काम वासना में लगा हुआ है, काम वासना मतलब इंद्रिय तृप्ति जो लगा हुआ है, अनेक चित्त, उसका चित्त जो है, चित्त का मतलब मन, चित्त का मतलब कॉन्शसनेस, चित्त का मतलब बुद्धि, जो चित्त है वह एक नहीं है, अनेक है। एक जगह बैठा हुआ हजार चीज सोच रहा है, अनेक चित्त, अनेक प्रकार का चिंता कर रहा है। विभ्रांत, भ्रमित हो जाता है अनेक प्रकार के कामनाओं के चलते, अनेक प्रकार कामनाओं के चलते भ्रमित हो जाता है। अनेक चित्त वह मोह जाल समावृत, इस प्रकार से वह मोह जाल में फंस जाता है। सम आवृत, चारों तरफ से ढक जाता है, तो निकलने का कोई रास्ता नहीं। प्रसक्ता काम भोगेशु, इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति में आसक्त, प्रसक्त प्रकृष्ण रूपेण आसक्त हो जाता है, और उसका लक्ष्य क्या होता है अंत में, पतंती नरके अशुचौ, नरक, अपवित्र नरक में वह ले जाया जाता है इंद्रिय तृप्ति के। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम इंद्रिय तृप्ति में न लगे। इंद्रियों को यदि कंट्रोल करना है तो दो चीज बड़ा पावरफुल है इंद्रियों को कंट्रोल करने का। यदि कोई नर पशु नहीं बनना चाहता है, तृष्णा में नहीं रहना चाहता है, तो दो चीज बड़ा पावरफुल है, एक है भगवान का प्रसाद और एक है भगवान का नाम। हमें वही खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित किया गया है प्रसाद, और हमें वही बोलना चाहिए जो भगवान से संबंधित है, यानी भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। क्योंकि समस्त इंद्रियों के बीच में जिह्वा बड़ा पावर, तार मध्य जिह्वा यति लोभमय शूरमति, जिह्वा बड़ा पावरफुल है। तो जिह्वा को बस में लाने के लिए सैयन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। राधा कृष्ण का गुणगान कब कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कब गा सकते हैं, जब केवल कृष्ण का प्रसाद खाएंगे। बड़ा इंपोर्टेंट चीज है। बहुत लोग प्रावधिक स्वामी जी हम वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन होने से हम कृष्ण भक्त नहीं बन सकते हैं। हां सुकृत आदमी वेजिटेरियन है, लेकिन कृष्ण भक्त बनने के लिए भगवत प्रसाद खाना बहुत जरूरी है। कदम शाकाहारी है, आजकल होटल भी है ना शाकाहारी भोजनालय, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। चलिए हम थोड़ा प्रसाद और वेजिटेरियन फूड पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो वेजिटेरियन फूड है, जो लोग वेजिटेरियन बनते हैं, चिड़िया सब वेजिटेरियन है, इसका मतलब है ना भगवान के भक्त हो गए। लोग जाते हैं होटल में खाने के लिए, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। लेट्स थिंक लिटिल बिट, वहां क्या खाते हैं? जो भोजन बना रहा है वो क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है? हैं? पैसा के लिए, ऐसी है ना, वो भोजन बना रहा है पैसे के लिए। तो जो भोजन बना रहा है उसे भोजन में क्या डाल रहा है? पैसा डाल रहा है। पैसा कमाने का अच्छा तरीका है ना। वो भोजन में सोच रहा है कि आए खाएंगे पैसा देंगे, भोजन बना रहा हूं तो उससे क्या होगा, पैसा मिलेगा। किसी ने कहा है कि पैसे वाले चिल्लाते हैं और धन वाले मुस्काते हैं। दोनों में अंतर है, धन में और पैसा में। पैसा मतलब बैंक बैलेंस। गर्ग जी, अरे अपने काम का बात है सुन लो। पैसे वाले चिल्लाते हैं और धन वाले मुस्काते हैं, संसारी कहावत है लेकिन काम का बात है। पैसा मतलब बैंक बैलेंस, या बैंक बैलेंस से खूब स्वप करेंगे, पार्टी कहीं करना हो तो करोड़ों रुपया खर्चा कर देंगे, लेकिन भगवान के मंदिर में कुछ देना हो तो उनकी नानी मर जाएगी, सोच सोच कर देंगे। स्वप करना होगा, नया नया गाड़ी खरीदेंगे, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे, करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे। एक हमारा कमेटी मेंबर है जयपुर के, वाइस चेयरमैन एस के पुदार जी, वो 60 करोड़ रुपया बनाए लगाए अपने घर बनाने में, स्वप और कुछ नहीं। पैसे वाले चिल्लाते हैं, दिखाते हैं, स्वप करते हैं, और धन वाले मुस्काते हैं। ये बात हमको डॉक्टर गौर हरि सिंघानिया बताए थे, जेके ग्रुप के जो मालिक हैं। ओके देवकीनंदन जी, क्योंकि कानपुर में जब मंदिर बना रहे थे तो बहुत पैसे वाले वहां पर हैं, ये पान मसाला वाले बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन देते नहीं हैं। तब उन्होंने कहा था कि पैसे वाले चिल्लाते हैं और धन वाले मुस्काते हैं। वो कह रहे थे कि आज 1 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे पार्टी में, क्या मैं नहीं कर सकता हूं? मैं भी कर सकता हूं, कानपुर मेरा है, मैं कर सकता हूं, लेकिन हमारा संस्कार वो नहीं है। तो संस्कार होना यह धन है, भक्ति प्राप्त करना यह धन है, अच्छा स्वास्थ्य करना प्राप्त करना धन है, बाप मां बड़ों का आदर करना यह धन है, प्रचार कार्य में सहयोग करना यह धन है। इससे हम लोग प्रसन्न रहते हैं, मुस्काते रहते हैं। तो पैसा यदि शाकाहारी भोजनालय में जाएंगे तो बिजनेस माइंड होगा, पैसा पैसा पैसा। कुछ लोग कहते हैं मैं होटल में नहीं खाता हूं, घर में खाता हूं, ठीक है, लेकिन घर में बनाता कौन है? वो महाराज जी बनाते हैं, वही पैसा। हरिदास सुन लो, सुन लो, काम करेगा। क्या बात कर रहा था, प्रश्न जरूर पूछोगे। वो महाराज जी बना रहे हैं, वही पैसे वाले, पैसे के लिए ना। अंतर इतना ही है कि होटल में उसका लक्ष्य था केवल पैसा के लिए, यही ना। कौन आ रहा है खाने, कौन जा रहा है पता नहीं, लेकिन घर में महाराज बनाते हैं पैसा के लिए। क्या वे प्रेम से बनाते हैं क्या? घर में कुछ समय कोई चला जाए कि भाई भूख लगा महाराज जी दो चपाती बना दो। महाराज चपाती बनाएंगे 10 गाली इसमें देकर के बनाएंगे। बदमाश कहीं का कुछ समय आ गया, अभी समय थोड़े है बनाने का, मैं सो रहा था कितना अच्छा है। 10 गाली देकर के भोजन बनाएंगे तो भोजन क्या होगा, क्या होगा? आओ गाली परोस रहे हैं। नहीं नहीं मेरी पत्नी बनाती है घर में खाना, हम बड़ा प्रेम से खाते हैं। भाई जिसकी पत्नी मां बहन बनाती है अति उत्तम है। स्त्रियां जब भोजन बनाती है तो बड़ा प्रेम से भोजन बनाए। स्त्रियां जब भोजन बनाने जाती है और पति से झगड़ा कर करके भोजन बनाएगी तो क्या परोसेगी आपको? वही ना, झगड़ा किया था, पति भोजन बनाने जा, पत्नी जा रही है, पति डांडे जाओ जल्दी ऐसे बनाना ऐसे बनाना ऐसे बनाना, दो चार उपदेश दे दो और थोड़ा झगड़ा कर दो उसके साथ में, तो भोजन रोटी बनाएगी लेकिन उसका दिमाग कहां रहेगा झगड़े के ऊपर, तो वही दिमाग उसमें जाएगा। इसीलिए सब शाकाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रसाद। यदि प्रसाद हो तब तो कर्मफल नहीं लगता है, वो खत्म हो जाता है। तो दो चीज बड़ा पोटेंट है, भगवान का प्रसाद और भगवान का नाम। ये दो चीज है जिह्वा को बस में कर सकता है, और जिसके जिह्वा बस में हो गई उसका बेड़ा पार हो गया। तो प्रभुपाद जी ये बहुत प्रैक्टिकल बात दिए हैं, सिंपल चीज। कृष्ण का प्रसाद खाओ और कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। और भी देखेंगे कि जो यथावत प्रसाद खाता है, हम लोग स्वयं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं है, स्वयं एक्सपीरियंस करो। यदि हम वही खाएं जिसको भोग लगाकर खाएं तो आप देखना आपके नाम जप में बहुत मन लगेगा, जप करने में मन लगेगा। लेकिन रेस्टोरेंट का होटल का बाहर का खाना यदि खाएं और फिर जप करो, माला हो जाएगा लेकिन जप नहीं होगा, मन नहीं लगेगा उसमें। मन लगेगा, मन भागता रहेगा, ये करना है वो करना है वो करना है। महाराज चित्रकेतु का मन वैसा नहीं था, एकांत भाव से कर रहे थे वो मंत्र का उच्चारण। तो ये मंत्र बड़ा पोटेंट है, हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न है, कोई इसमें भिन्नता नहीं है, भिन्नात्मा नाम नामिनः। तो हमें चाहिए सदैव भगवत प्रसाद ग्रहण करें और भगवान का नाम लें, इस प्रकार से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। यह मानव देह प्राप्त करने की सफलता है, नहीं तो हम लोग नर पशु हैं, नर पशु हैं। तेषाम आशीष ईश, भगवान के पास नहीं जाते हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ठीक है, देवताओं के पास जाते हैं, देवता लोग खुश होकर के बेचारे दे देते हैं जो चाहिए, सप्लाई उनको मिल जाती है, लेकिन वो सप्लाई परमानेंट नहीं है। वो सप्लाई तेसाम आशीष, उनके द्वारा दिया गया जो आशीष है, कहते हैं हे ईश तद अनुविनश्यंती, उनके खत्म होने के साथ साथ वो आशीष भी खत्म होता है। यथा राजकुलम, पहले कांग्रेस का राज था तो मिनिस्टर लोगों से मिलना कितना मुश्किल था, आसान नहीं था, आजकल कहीं जाकर के मिल सकते हो, वो खत्म हो गया, आशीर्वाद खत्म हो गया। पहले सोनिया गांधी से मिलना मुश्किल था, अभी आसानी से मिल सकते हो। पहले नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह या जो भी अभी हैं, उन्होंने से पहले मिलना बड़ा इजी था, लेकिन अभी कठिन हो गया, पावर पर है ना। तो जब गद्दी पर हैं तब तो बिजली का करंट है, और जब करंट गया तो कोई तार छू सकता है, आसान है। तो राजकुलम, तो इसलिए हम लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए कि मानव जीवन जिसके लिए दिया गया है उसी के लिए एंडेवर करना चाहिए। और वह दिया गया है एक पहले बात को समझने के लिए, वेदांत सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। प्रभुपाद जी प्रत्येक पन्नों में बात कहते हैं कि हम लोग यह देह नहीं है, हम यह देह नहीं है, इतना भी समझ जाए कि वी आर नॉट दिस बॉडी एनफ। क्या हम समझ पाते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है? काम क्रोध मोह मत्सर्य लोभ से बंधे हुए हैं। कोई चिट्ठी काटे दर्द करता है, कोई दो बात बोल दे दुख लगता है, तो फिजिकली मेंटली सब प्रकार से हम लोग बंधे हुए हैं। लेकिन हम जब समझ लेंगे कि हम लोग यह देह नहीं है, है? गीता से हम सुनते हैं कि हम लोग यह देह नहीं है। जैसे साइंस में होता है नॉलेज और एक्सपेरिमेंट। आप रसायन शास्त्र पढ़े होंगे, केमिस्ट्री, तो कह दिया जेडन प्लस एच टू एस एफ फोर इक्वल टू जेडन एस एफ फोर प्लस एच टू ओ प्लस एच टू, हाइड्रोजन बनाने का ये तरीका है। लेकिन उतना पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, लेबोरेटरी में जाओ, जितना जेडन है उतना मिलाओ, एच टू एस एफ फोर को उसमें डालो, फिर उसमें से गैप निकलेगा नली के ऊपर, तब उसको चेक करो तो कह सकते हो ये हाइड्रोजन गैस है और पानी नीचे आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये फिलॉसफी है प्रभु वी आर नॉट दिस बॉडी, लेकिन इसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या है? नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति। ये नवधा भक्ति से भगवान में विश्वास होगा, और जैसे जैसे विश्वास होता जाएगा वैसे वैसे विषयाशक्ति छुटती जाएगी। और जब 100% विश्वास हो जाएगा भगवान में तो 100% विषयाशक्ति छुट जाएगी, और तब उस समय हम अन्य किसी देवताओं के पास नहीं जाएंगे, फिर हम हेडक्वार्टर में जाएंगे। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार दी तिब्रेण भक्ति जोगे न जेत पुरुषा परा, कुछ भी तकलीफ हो कृष्ण के शरण में जाएंगे, कृष्ण के शरण में जाएंगे। एक छोटा कथानक मैं कहूंगा, उसके बाद प्रवचन का विराम करूंगा। एक व्यक्ति था जो भगवान का बड़ा अच्छा भक्त था, और एक था जो कि इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ था। तो इंद्रिय तृप्त, आज के श्लोक के अनुसार यही पता चला कि जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं वो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, है ना, और जो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं वे भगवान के शरण में जाते हैं। दो श्लोक प्रभुपाद जी तात्पर्य बतलाए हैं, एक बताए हैं कामे अस्त हित ज्ञान, और दूसरा कहते हैं अकामो सर्व कामो वा। तो अकामो सर्व कामो साधुओं के लिए हो गया जो सुकृत लोग हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति में लोग हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। तो इस संबंध में कथानक है कि एक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा था। एक राजा थे, उनका नाम था अशरफ दौला, राजा का नाम था मुगल बादशाह अशरफ दौला। तो जो साधु था वह लोगों से कहता था कि भाई जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला, जो भगवान देंगे अशरफ दौला क्या दे सकता है। और जो इंद्रिय तृप्ति में फंसा हुआ फकीर था, चमचा जो भी था, वो कहता था जो देगा अशरफ दौला क्या देगा मौला, जो हमारा राजा देगा, क्यों राज है? तो था वो देगा तो भगवान क्या दे सकता है, साधु लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो यह बात अशरफ दौला के पास गई, तो अशरफ दौला दोनों को बुलाया, साधु को बुलाया और उस व्यक्ति को भी बुलाया जो अशरफ दौला का सेवक था। तो दोनों से अशरफ दौला ने पूछा, तो साधु ने बोल दिया हां बात सही है जो भगवान देंगे, अरे आपके पास भी जो भगवान का आता है वही आप देते हो, तो जो भगवान देंगे यदि वो नहीं देंगे तो आप कहां से दोगे, जो वो देते हैं वही सबको प्राप्त होता है। दूसरा कहता माया किसी को जानता नहीं, केवल आपको ही जानता हूं महाराज, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, सब कुछ आप ही देते हैं। तो असर दोनों का ठीक है, कल से परीक्षा शुरू हो रही है तुम दोनों का एक हफ्ता तक, और देखते हैं कि तुमको क्या मौला देते हैं, भगवान तुम्हें क्या देते हैं। तो ये जो अशरफ दौला का सेवक था, गर्मी का दिन था, अशरफ दौला डेली उसको बुलाता था और एक तरबूज वाटरमेलन उसमें थोड़ा काट करके एक सोने का गिन्नी उसमें डालता था, फिर भरवा करके उसको दे देता था। तो यह लेकर आता था, तो एक इसमें क्या होगा, इतना बड़ा परिवार है, मुसलमानों का परिवार ऐसे ही बड़ा होता है, इतना बड़ा परिवार है क्या होगा, इसे चलो कुछ चावल दाल रहेगा तो भोजन होगा। तो जा करके एक फल वाला के पास देता था, बेचता था, और चूंकि कटा था तो फल वाला भी कम दाम देता था, लेता था। ये साधु बेचारा था, वो भीख मांगता था दिन भर जो भी मिलता था, सोचा कि अब कहां चूल्हा चकड़ करने जाएंगे, कहां भोजन बनाएंगे, चलो गर्मी का दिन है, फल से भी काम चल जाएगा। तो चावल दाल ले जा करके दुकानदार को देता था वहीं पर, और उससे वो फल लेता था। तो सब लोग समझते हैं कि साधु लोग बड़े मूर्ख होते हैं, ये ना। तो बहुत प्रकार का फल था, लेकिन जो कटा हुआ फल था ये साधु को देता था। साधु होता था डेली वाटरमेलन काटा, उसमें से सोने का गिनी मिला है। तो यह 7 दिन हुआ, 7ों दिन दोनों यही काम किए। वो जो मुस्लिम था अशरफ दौला का चेला, वो वाटरमेलन बेच दिया करता था और साधु प्रत्येक दिन खरीद लिया करता था। तो 7 दिन के अंदर आया हुआ, दोनों को बुलाया गया, उसे पूछा अशरफ दौला ने अपने चेले से कि तुम्हें क्या मिला। अरे कहा महाराज मत पूछिए, आपने जो कुछ दिया उसे हमारा घर भरपूर हो गया, सब लोग बड़े प्रसन्न थे, बहुत कुछ मिला। साधु से पूछा कि तुम्हें क्या मिला, कहा कि मौलाना हमें क्या नहीं दिया, ये तो आश्चर्य हो गया कि 7 दिन में 7 तरबूज तो मिला ही, साथ साथ 7 सोने के गिनिया भी मिल गया मुझको। तो अशरफ दौला थोड़ा आश्चर्य, भाई ये कैसे हो गया, मैं तो इसको दिया, इसको कैसे मिल गया। तो पूछा उसने कि तूने क्या किया, कहा कि महाराज आप तरबूज देते थे उसे थोड़े परिवार का पेट भरता, मैं बेच दिया करता था और उससे जो पैसा मिलता था चावल जा करता था। साधु से पूछा तू क्या करता था, कहा मैं मधुकरी करता था, जो मिलता था ला करके फल खरीदता था और प्रत्येक दिन हमको दुकानदार वो फटा हुआ कटा हुआ फल देता था, उसमें सोने गिन मिलता था। तो अशरफ दौला कहा कि महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो देगा मौला क्या देगा अशरफ दौला, भगवान जो देंगे अन्य कोई नहीं दे सकता है, इसीलिए हम लोगों को अन्य किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल राधा रास बिहारी के चरणों में जाइए, कृष्ण के चरणों में जाइए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यही महाराज चित्रकेतु आज बात बतलाए हैं कि सर्वतो भावेन कृष्ण के चरण में जाइए, अकाम कोई कामना हो या ना हो, सर्व कामो सब कामना हो, यानी भक्त कर्मी और ज्ञानी सबके लिए भगवान के पास जाओ, क्योंकि हम भगवान के हैं, भगवान के पास हम सब लोगों के लिए सब कुछ है, इसलिए अन्य कहीं जगह भटकने की जरूरत नहीं है। और इसी बात को हमें आज प्रचार करने की जरूरत है, लोग भटक रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में भटक रहे हैं, मृग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं, अपना प्राण गंवा रहे हैं, उन लोगों को डायरेक्शन देने की जरूरत है, उन लोगों को बतलाने का जरूरत है। तो ये पुस्तक वितरण उसी मार्ग में एक ए है, पहले 2 ही चीज था इस कान में, अब तो बहुत कुछ हो गया है, एक है था हरिनाम और दूसरा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैं पहले ही बताया था हरिनाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों में भी प्रभुपाद जी कहीं कहीं प्राय बुक डिस्ट्रीब्यूशन को महत्व दिए, लेकिन हरिनाम के साथ। मैं बॉम्बे का सुविनियर पढ़ रहा था, तो गिरा स्वामी एक आर्टिकल लिखे हैं वो मधुविसा प्रभु के विषय में। मधुविसा प्रभु पहले जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट थे, तो प्रभुपाद जी इनको ऑस्ट्रेलिया भेजे, तो ऑस्ट्रेलिया जाकर के इन्होंने प्लानिंग किया कि हम लोग रथ यात्रा करेंगे। अरे रथ यात्रा नहीं करेंगे, अभी हम लोगों को एक स्थान ढूंढना चाहिए, वहां पर रह करके पहले पुस्तक वितरण करेंगे, रथ यात्रा नहीं करेंगे। मधुसर नहीं, हम रथ यात्रा करेंगे। तो लीडर थे, जीवीसी थे, रथ यात्रा करेंगे। फिर भक्तों को समझाया कि देखो हम पुस्तक वितरण के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन पुस्तक वितरण का तौर तरीका समझना चाहिए। हम रथ यात्रा करेंगे तो रथ यात्रा में हजार लोग जुटेंगे, वहां पुस्तक भी वितरण होगा, रथ यात्रा का मतलब था वहां पुस्तक वितरण होगा और लोग भक्त भी बनेंगे, जब और भक्त बनेंगे तो और पुस्तक वितरण होगा। तो पुस्तक वितरण होगा लेकिन अवेयरनेस पहले जरूरी है, कम्युनिकेशन पहले जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी दो चीज दिए, ये दो पहिया हैं, दो पैर हैं, हरिनाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो चलता रहेगा तो गाड़ी रेलवे ट्रैक पर ठीक से चलेगा। मैं जयपुर था लास्ट टू लास्ट वीक, हमारे एक भक्त हैं विमल चौधरी, उनके घर पर गया था, तो उनकी बेटी अमेरिका पढ़ रही है, तो उसके फ्रेंड और उसके मां बाप आए थे, तो विमल हमारा इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो एलए से थे क्या, तो लड़की बोलती है आई डू नॉट नो हरे कृष्णा, हु आर हरे कृष्णा, आई डोंट नो, लेकिन बाप बोले नो नो वी नो, दे यू टू कम फॉर हरिनाम बिफोर, बट नाउ नोबडी कम्स, नोबडी कम्स। पहले लोग हरिनाम करते थे, हम जानते हैं हरे कृष्ण वालों को, देख सकते हैं जनरेशन चेंज। पहले हम हरिनाम करते थे, अवेयरनेस था, उसे बाप मां जानते थे कि ये हरे कृष्ण वाले हैं, लेकिन लड़की है नहीं जानती है, ऑलमोस्ट 20 ईयर ओल्ड गर्ल, नहीं जानती है, क्योंकि हरिनाम नहीं हो रहा है। तो हरिनाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन दो पोटेंट हैं प्रचार करने, जैसे महाप्रसाद और हरिनाम दो इंपॉर्टेंट है इंद्रियों को बस में करने के लिए, ठीक वैसे ही लोगों को इंद्रिय तृप्ति से हटा करके और कृष्ण के चरणों में लाने के लिए दो पोटेंट तरीका है, हरिनाम और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। So let us get into this thing, Harinam or book distribution. Thank you very much. Hare Krishna. Koi prashna? Yes. Mike. Please switch it on, don't switch it off.
Hare Krishna. Agar इंद्रिया कंट्रोल करने का है तो भगवान का जो ऑफर किया प्रसाद खाने का है और हरिनाम कीर्तन करने का, हरिनाम जप करने का है। जब भी हम प्रसाद का आइटम बनाते हैं वो भगवान को जो प्रिय है वही बनाने का, यो अगर हम हमारे पसंद का आइटम प्रिपेयर करके भगवान को ऑफर करते हैं वो शुद्ध भक्ति होता है कि क्या नहीं है?
अच्छा प्रश्न है। वेल, शुरू शुरू में हम लोग वही करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, ये कहलाता है आरोप सिद्धा भक्ति। ये भक्ति है लेकिन उसमें भक्ति नहीं आरोप लगा देते हैं, ये सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो पहले हम ऐसे ही करेंगे, जो हमको अच्छा लगता है ना वही हम अर्पण करेंगे, और इस प्रोसेस से हम बना रहे हैं भगवान के लिए, भले हमको अच्छा लगता है लेकिन बना रहे हैं भगवान के लिए। तो ऐसे हम शुद्ध हो जाएंगे, जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान को क्या अच्छा लगता है वो भगवान स्वयं आपको कहेंगे, बताएंगे। ये सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मदन मोहन को सूखा रोटी देते थे, जो मिलता था लगक देते थे। सनातन गोस्वामी शुद्ध भक्त हैं लेकिन फिर भी भगवान को कहना पड़ा कि सनातन मेरी मैया तो मुझे माखन मिश्री खिलाती थी, तू सूखा रोटी थोड़ा नमक तो डाल दिया करो साथ में, भगवान कहे तो जैसे शुद्धि हमारी होगी तो आभास होगा, भगवान बतलाएंगे कि हमें ये पसंद है और भक्त लोग करेंगे, भगवान जो चाहेंगे भक्त लोग करेंगे। इच्छा यही है, इच्छा होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। जैसे जाड़ा का दिन आजकल है, भगवान को थोड़े जाड़ा लगता है, जाओ नॉर्थ इंडिया में भगवान को खूब, हमारा प्रद्युम्ना है वहां पर है, कई एक प्रकार का टोपी खरीद कर लाया है वृंदावन से, भगवान को खूब टोपी पहनाता है, स्वेटर खरीद करके लाया है, एयर कंडीशन चालू करते हैं गर्मी के दिन में, भगवान क्या जरूरत है, जरूरत है नहीं है, लेकिन ये अपने अनुकूल करते हैं, ये भक्ति है, कोई तकलीफ नहीं है, कीजिए वहां से करेंगे बाद में अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे जानना था कि मान लीजिए कोई कर्मिक का बनाया हुआ कुछ अगर हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं, या किसी जो भक्त ने बनाया उसको फिर वो भगवान को ऑफर करते हैं, तो उस दिन जो प्रसाद आता है उस दिन में कुछ अंतर होता है या फिर क्या कुछ अंतर नहीं होता है?
ये डिपेंड करता है हमारे शुद्धता पर। यदि बेस्ट चीज तो यही है कि जो भगवान के लिए बनाया गया हो, भगवान उसके इंजॉयर हो, इस भाव से बनाया गया हो और वह प्रसाद खाए वो अच्छा है। सेकेंड बेस्ट है कि ठीक है जो भी है वो चलता है, क्या करेंगे, लेकिन भगवान को भोग लगा लें और तब खाए प्रसाद के रूप में, क्योंकि भगवान को अर्पण कर दिया गया सब कर्म फल खत्म हो गया। लेकिन इसका मतलब नहीं था हम होटल में खाएंगे भगवान अर्पण कर देंगे हो गया, नहीं वो नहीं है, अपने से करो, स्वयं बनाओ, भगवान को खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ, भगवान खाते हैं यदि खिलाओगे तो। तो बेस्ट यह है कि हम स्वयं, जैसे अमरीश महाराज किसी का सहयोग नहीं था, कोई हेल्प नहीं था, स्वयं करते थे सब काम, अपने हाथ से करते, अपने रानी से भी हेल्प नहीं लेते थे, स्वयं करते थे, तो वो बेस्ट है। और कोई प्रश्न? यस, स्विच इट ऑन प्लीज, डोंट स्विच इट ऑफ, स्विच इट ऑन ऑल द वे।
कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी मुझे पूछना था कि आप जैसे बोल रहे थे कि देवताओं का देवताओं का नाश लेसे, तो वो भी तो भगवान से ही आ रहा है ना, मतलब अभी तक मैंने सुना था कि दानवों का नाश होता है तो देवताओं का, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। वो
जब भी प्रलय होता है तो सबका नष्ट, सब नष्ट, ब्रह्मा जी भी मरने वाले हैं, अभी उनका 12 बज रहा है, ब्रह्मा जी का भी, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपित कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते, कहते चिट्टी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत पुनरा अवर्तिनो अर्जुन पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम, ये होता रहता है।
पर अगर जैसे कोई देवताओं को भी फॉलो करता है,
अंतर इतना ही है कि हम लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। अब हम आपके जीवन में और मच्छर के जीवन में, दोनों तो जीव हैं लेकिन दोनों में अंतर है, मच्छर गया काम से, आप कुछ दिन जियोगे, तो वैसे देवता का आयु ज्यादा है, अमर नहीं है, अमर कहलाते हैं लेकिन अमर है नहीं, कंपेरिजन में अमर कहलाते हैं मात्रा के रूप में। जैसे मच्छर के लिए आप अमर हो,
लेवल ऑफ यूर से, लेवल यू आर सेइंग इज डिफरेंट।
यस,
ओके, थैंक यू।
और कोई प्रश्न? ऑल राइट, सो लेट्स स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, शील प्रभुपाद की जाय।